हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तब सिद्धार्थ झलक की ओर नफरत भरी नजरों से देख रहा था और फिर उसे घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने तुमसे ज्यादा चालबाज लड़की अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी के खिलाफ साजिश रचने की? क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी वो बोन मैरो वाली कहानी मेरी दादी को बताने की? क्या तुम मेरी दादी की सहानुभूति हासिल करना चाहती हो अपनी भोली भाली सी शक्ल बनाकर? मेरी दादी को अपने बातों के जाल में फंसाना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हारे घटिया इरादों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। क्या तुम मेरी दादी की सहानुभूति हासिल करना चाहती हो अपनी भोली भाली सी शक्ल बनाकर? मेरी दादी को अपने बातों के जाल में फंसाना चाहती हो? अब आगे। लेकिन मैं तुम्हारे इन घटिया इरादों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तुम जानबूझकर मेरी दादी को परेशान करना चाहती हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि दादी की कंडीशन पहले क्या थी और क्या नहीं है? हाँ। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने इस तरह से झलक पर इल्ज़ाम लगाया तो झलक का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। वैसे भी वो बेबाक और दबंग लड़की थी जो किसी से डरती नहीं थी। अचानक झलक सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में एकटक घूरते हुए बोली, ओ रियली मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम जानते हो अगर मैं चाहती तो सारा सच दादी को बता सकती थी। हाँ, कि किस तरह से मेरे साथ क्या हुआ। अचानक कुछ सोचते सोचते वो चिढ़कर बोली, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लैट में आग लगाकर मारने की कोशिश किसने की? ओबेरॉय परिवार ने। क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे अस्पताल से अगवा करके मेरी जान लेने की कोशिश किसने की? ओबेरॉय परिवार ने। और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे खूबसूरत से बदसूरत बनने पर किसने मजबूर किया? ओबेरॉय परिवार ने। और किस तरह से उन्होंने उन्हें पालने वाले माता पिता पर जानलेवा हमला करवाया? हाँ, तुम तो सारी बात अच्छी तरह से जानते होगे ना। अगर तुम्हें ये सारी बातें अच्छी तरह से नहीं पता होती तो तुम मुझे उस अपार्टमेंट में बचाने के लिए कभी नहीं जाते जो तुम दादी की वजह से गए थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दादी को कितना प्यार करते हो और सिर्फ दादी के लिए ही तुम मुझे बचाने के लिए उस अपार्टमेंट में आए थे और साथ ही साथ जर्मनी जहाँ तक पहुँच कर तुम मुझे बचाने के लिए आए थे। मैं अच्छी तरह से सारी बातें जानती हूँ। ये सब कुछ तुमने सिर्फ और सिर्फ दादी की खुशी के लिए किया है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए इस बात का पता लगाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि मैं कौन हूँ। और मैं ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। जब तुमने मेरे साथ आकांक्षा से सगाई करते हुए भी शारीरिक संबंध बनाए तो मैं समझ चुकी थी कि तुम मेरा सच जान चुके हो। इसीलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी होने वाली बीवी आकांक्षा को खुश करने के लिए मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकतें करते रहे थी और तुमने मुझे अबॉर्शन करने पर मजबूर किया। और जब तुम्हारा इरादा बदल गया फिर उसके बाद तुमने आकांक्षा के लिए मुझे बच्चा रखने के लिए मजबूर कर किया है ना, ये सोचकर कि तुम्हारी बीवी आकांक्षा को बच्चा होने जैसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े, यही कोशिश कर रहे थे ना तुम। झलक के दिल में जो आ रहा था वो सिद्धार्थ को सुनाई जा रही थी। इस वक्त झलक को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो आगे बोली, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम आकांक्षा से बहुत प्यार करते हो और बल्कि तुम्हारे तो कितने ही औरतों के साथ भी रिश्ते हैं। मैंने खुद उस फ्लैट में उस दिन तुम्हारे उस नाइट बार वाले मेंशन में खुद दो लड़कियों को तुम्हारे रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। लेकिन फिर भी तुम मुझ जैसी एक बदसूरत लड़की के साथ रिश्ते बनाते रहे तो इसका मतलब साफ है तुम पहले से मेरी सच्चाई जानते थे, है ना? और रही बात दादी की, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद पर हमला करने वाले बात दादी को बता देती ताकि उन्हें प्रॉब्लम हो जाए? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि दादी को कब और क्या बताना है, इसीलिए मैंने उन्हें सिर्फ सच ही बताया है, वो भी आधा अधूरा, पूरी बात उन्हें नहीं बताई। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें इतनी सी भी परेशानी हो। ये बोलकर झलक सिद्धार्थ को अपनी जलती हुई नजरों से देखने लगी और फिर उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, और वैसे भी अब तो हम दोनों का रिश्ता ही बदल चुका है। भले ही तुम मुझे एक केयरटेकर मानो लेकिन दादी मुझे अपनी पोती मानती है, तो मुझे लगता है दादी ने ठीक कहा है, तुम्हें मुझसे दूरी बनाकर रहना चाहिए, समझे तुम, और मेरा अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इतना बोलकर झलक ने सिद्धार्थ को एक तरफ गुस्से से ढकेल कर दिया और सीधा दादी के पास चली गई। वहीं सिद्धार्थ के तो जैसे शरीर में जान ही नहीं बची थी। झलक ने नफरत भरी आवाज में जिस तरह से सारी बातें कही थी उसे सुनकर उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और गुस्से से ज्यादा उसे दर्द महसूस हो रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि झलक उसके बारे में इतनी सारी गलत फहमियां पाल कर बैठी होगी। झलक को लग रहा था कि सिद्धार्थ शुरू से जानता है कि वो आकांक्षा की जुड़वा बहन है और इसीलिए उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वो भी उस आकांक्षा के कहने पर। क्योंकि वो आकांक्षा को प्यार करता है, उसे तकलीफ नहीं होने देना चाहता है, और वो सिर्फ और सिर्फ झलक को हर बार बचाने के लिए गया, वो भी सिर्फ दादी की वजह से, क्योंकि दादी नहीं चाहती थी कि झलक को किसी तरह की कोई तकलीफ हो। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो झलक को क्या जवाब दे क्या नहीं। फिलहाल उसने एक जोरदार घूंसा मारकर सामने वाली दीवार पर दे मारा था। उसके हाथ में हल्की सी सूजन भी आ गई थी, लेकिन उसे अपने हाथ के दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। वहीं झलक सीधा दादी के पास जा बैठी थी। दादी खुद अपने हाथों से झलक के लिए सूजी का हलवा बनाकर लाई थी और उसका मुंह मीठा कराते हुए बोली, मेरे बच्ची, मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद करने लगी थी, लेकिन अब तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो मुझे कोई कीमती चीज मिल गई हो। रियली मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बार बार दादी झलक की एकदम पक्की फैन हो गई थी, कभी उसके माथे चुंबन कर रही थी, कभी उसके गालों को सहला रही थी। वेल, अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी दादी का सेक्रेटरी वहां आया और अदब से बोला, ओबेरॉय परिवार यहां आया है। ये सुनकर झलक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वो उनसे बहुत नफरत करती थी और वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि वो लोग भी उसे नापसंद करते हैं। फिलहाल दादी ने थोड़ी रॉयल अंदाज में कहा, ठीक है, बुलाओ, अंदर ले आओ। अब जल्दी ही ओबेरॉय परिवार वहां आ गए थे। उनके हाथों में ढेर सारे फल, मिठाई और फूल थे। वो हल्की स्माइल करके दादी की ओर गिफ्ट्स बढ़ाते हुए बोले, मैडम खुराना, आई होप आप ठीक होंगी। जब से हमने सुना कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, वाकई हम तो परेशान हो गए थे। बल्कि हमने आकांक्षा से भी कहा कि वो आपका ध्यान रखें और यहीं आपके साथ रहें। मिस्टर ईशान ओबेरॉय पूरे जबान से चिपके रहे थे दादी को पूरी तरह से अपने शीशे में उतारने के लिए, लेकिन दादी ने उन्हें कुछ खास भाव नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर झलक दादी के पास से उठकर अब एक तरफ सोफे पर बैठ गई थी, क्योंकि वो ओबेरॉय परिवार वालों से नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन तभी मिसेज नैना ओबेरॉय ने झलक को मुंह बनाते हुए देख लिया, तुरंत जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी और उसे जबरदस्ती गले से लगाकर बोली, मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे मेरी झलक, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, मेरी बेटी। ये बोलकर वो उसे गले से लगाकर लाड़ प्यार का नाटक जताने लगी। वहीं झलक मिसेस ओबेरॉय की नौटंकी वाले आंसुओं को गौर से देख रही थी, खुद से बुदबुदाई, लगता है नौटंकी करने की खूबी मुझे इन्हीं से मिली है, और इम्प्रेस होकर फिर मन में सोच रही लगी कि इन्हें तो किसी फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए थी।
एकदम से झलक ने उनका हाथ को झटक दिया था और बेपरवाही से बोली, मिसेज ओबेरॉय, आपको इस तरह से अपने कीमती आंसू मुझ पर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अब ये सुनकर मिस्टर ईशान ओबेरॉय ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया, लेकिन उर्वशी के सामने वो झलक को पर गुस्सा भी नहीं कर सकते थे और वो अपने हाथों को बंद करके सीधा झलक के पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे मेरी बेटी झलक, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? सच में हमने तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे, तुम हमें कहीं नहीं मिली। लाइक, शेयर, कमेंट करें दोस्तों प्लीज, और मोटिवेट करें।